हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। कृषा के एक्सीडेंट के बाद वो हॉस्पिटल रूम में थी। उसने डॉक्टर को बहुत रोका था कि वो योग और ध्रुव को अंदर ना आने दे, लेकिन डॉक्टर के बाहर निकलते ही उन दोनों ने रूम के अंदर मौजूद सारे स्टाफ को हटा दिया था। ध्रुव और योग अंदर आने के बाद कृषा को सर्द निगाहों से देख रहे थे, जबकि कृषा की नजरें झुकी हुई थी। अचानक योग कृषा के पास आया और उसके पास बैठ गया। युग को अपने करीब देखकर कृषा ने जल्दी से उसकी तरफ देखा और मासूमियत से कहा, ज्यादा नहीं लगी है? वो तो तभी पता लगेगा ना कृष, जब मैं चेक करूंगा। युग ने धीरे से जवाब दिया और फिर कृषा को देखने लगा। उसके माथे पर चोट लगी थी और एक हाथ पर कुछ चोटें आई थी। कृषा को देखने के बाद युग ने सिर हिलाकर कहा, आज से तुम्हारी ड्राइविंग बंद। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, कृषा ने आंखें बड़ी करके कहा। फिर उसने ध्रुव की तरफ देखकर कहा, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? तुम्हारे अचानक कृषा बोलते हुए रुक गई। उसने देखा ध्रुव हाथ बांधकर उसके सामने खड़ा था और सर्द निगाहों से उसकी तरफ देख रहा था। उसके देखने का लहजा भर काफी था ये बताने के लिए कि वो इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में है। उसके अंदर चल रहा तूफान उसकी आंखों में झलक रहा था। कृषा ने तुरंत अपनी नजरें ध्रुव से हटा ली। उसने युग से कहा, अपने बेटे से कहो मुझे ऐसे मत देखे, मुझे डर लगता है। अच्छा, मेरा बेटा? और अब तुम्हारा कुछ नहीं लगता ये? युग ने भौहें उठाकर पूछा। कृषा ध्रुव की तरफ देख तक नहीं रही थी। उसने युग से जवाब में कहा, नहीं, अब ये सिर्फ मेहर रायचंद का फियांसे है। ध्रुव ने गहरी सांस ली और युग से कहा, डैड, क्या आप कुछ देर के लिए हम दोनों को अकेला छोड़ सकते हैं? युग कुछ कहता उससे पहले कृषा ने उसका हाथ पकड़ लिया और जल्दी से कहा, बिल्कुल नहीं युग, तुम मुझे अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। लेकिन मुझे बात करनी है, ध्रुव सख्ती से बोला। कृषा ध्रुव के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ थी। उसने युग की तरफ देखकर नामे सिर हिलाया। कृषा के बार बार मना करने पर युग ध्रुव से बोला, ये तुमसे अकेले में बात नहीं करना चाहती है और मैं इसे कभी भी फोर्स नहीं करने वाला। पहले अपना गुस्सा शांत करके आओ, फिर ही बात करना। मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, ध्रुव वहां बैठते हुए बोला। आप जिद्दी हैं तो मैं भी आप ही का बेटा हूँ। कृषा ने ध्रुव की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वहां एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी, जहां कृषा नजरें झुकाकर कभी युग की तरफ देख रही थी तो कभी ध्रुव की तरफ। युग अपने मोबाइल में गेम खेल रहा था, तो वहीं ध्रुव एकटक कृषा की तरफ देख रहा था। वो जानती थी कि जब तक कृषा उससे बात नहीं कर लेगी, ध्रुव वहां से हिलेगा तक नहीं। काफी देर तक इसी चुप्पी के बाद कृषा ने गहरी सांस देकर कहा, ठीक है, मैं तुमसे बात करने के लिए तैयार हूँ, पर तुम मुझे डांटोगे नहीं, और सेकेंड थिंग, तुम युग को कन्विंस करोगे कि वो मुझे ड्राइविंग करने से नहीं रोकेगा। मैं आप दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं बोलने वाला हूँ। डैड का जो डिसीजन है वो अपनी वाइफ के लिए है। हाँ, मुझे कभी ऐसे लगेगा कि डैड मेरी मॉम के लिए कोई गलत डिसीजन ले रहे हैं, तब मैं बीच में जरूर बोलूंगा, ध्रुव ने बेपरवाही से कहा। इनडायरेक्टली वो भी युग के फैसले से सहमत था। कृषा बात करने के लिए मान गई थी, इसलिए युग वहां से उठते हुए बोला, ठीक है, तुम दोनों बात करो, मैं डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी पूरी करके आता हूँ। इतना कहकर युग वहां से चला गया। उसके जाते ही ध्रुव कृषा के पास आकर बैठा और उसे अपने सीने से लगा लिया। युग की तरह ध्रुव भी कृषा को बच्चों की तरह ट्रीट करता था। वो जानता था कि कृषा में कितनी मासूम थी। वो इतनी बड़ी होकर भी अभी तक बच्चों की तरह रिएक्ट करती थी। कृषा को हक करने के बाद ही ध्रुव को सुकून मिला था। वो आंखें बंद करके कृषा को सहलाते हुए बोला, मुझे लगा आज मैं आपको खो दूंगा कृष। अगर ऐसा होता तो आई स्वेयर मैं उस गाड़ी वाले को आग लगा देता, खुद मर जाता, दुनिया खत्म कर देता। कृषा जल्दी से ध्रुव से अलग हुई और उसे डांटते हुए कहा, हे, बाकी सब ठीक है, लेकिन खुद को मारने के बाद बीच में कहां से आ गई? बस आ गई कृष, मुझे आपके बिना नहीं जीना है। आप कहोगी तो मैं अभी जाकर उस मेहर रायचंद से अपनी सगाई तोड़कर आ जाऊंगा, पर आगे से आप ये बेवकूफियां नहीं करेगी। हम आराम से बैठकर बात कर सकते थे, क्या जरूरत थी रोड पर इस तरह गाड़ी लेकर निकलने की? मैंने देखा पहले भी आपका एक्सीडेंट होने वाला था। डैड के सामने मैंने कुछ कहा नहीं, वरना वो आपको बहुत डांटते और वो मैं सुन नहीं पाता। आपको समझना होगा, आप हमारे लिए बहुत प्रेशियस हैं। ध्रुव कृषा को डांट भी रहा था तो साथ ही बातों में ये भी जता रहा था कि उसके लिए और युग के लिए कृषा कितनी इंपॉर्टेंट है। कृषा ने गहरी सांस ली और ध्रुव के गाल पर हाथ रखकर प्यार से कहा, अच्छा ठीक है, आगे से ऐसा नहीं करूंगी। तुम भी मुझे उस तरह मत देखना, मैं बाकी लोगों की कैटेगरी में नहीं हूँ। तुम्हें पता है ना, मुझे डर लगता है जब तुम और युग दोनों इस तरह अजीब नजरों से देखते हो। आप कहोगी तो मैं आगे से आंखों पर शेड्स लगाकर घूमूंगा, ध्रुव ने हल्का मुस्कुराकर कहा। नहीं, पर मैं अपने बेबी की इतनी क्यूट सी आंखी कैसे देखूंगी, कृषा ने मुस्कुराकर कहा, तो ध्रुव ने उसके फोरहेड पर हल्का सा किस किया। कुछ ही देर में योग अंदर आया तो उसने देखा ध्रुव ने अब तक कृषा को गले लगा रखा था। उन दोनों को उस तरह देखकर योग ने आइज रोल करके कहा, अब तुम उसे छोड़ सकते हो, वो बिल्कुल ठीक है। ध्रुव ने योग की तरफ देखकर ना में सिर हिला दिया। भले इस वक्त योग और ध्रुव ने मेहर की बात को ज्यादा सीरियसली ना लिया हो, लेकिन कृषा ने जिस तरह से रिएक्ट किया था उसके बाद वो इस मामले में एक बार फिर सोचना चाहते थे। ध्रुव और योग ने आंखों ही आंखों में देखते हुए फिलहाल के लिए शांत रहने को कहा। सुबह के लगभग 8 बज रहे थे। तारा बेंगलुरु के हॉस्पिटल में एडमिट थी। ध्रुव को बचाने के चक्कर में उसे गोली जो लगी हुई थी, वीर उसकी देखरेख में वहीं पर रुका हुआ था। जब उसे होश आया तब डॉक्टर ने वीर को इस बारे में इन्फॉर्म किया। इस वक्त वीर तारा के रूम में था। वीर ने एक नज़र तारा की तरफ देखा जो बिना किसी मेकअप के भी काफी खूबसूरत और मासूम लग रही थी। उसे देखकर वीर ने धीरे से कहा, अब कैसा महसूस हो रहा है तुम्हें? दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द, तारा ने गहरी सांस लेकर कहा। फिर उसने इधर उधर देखा तो ध्रुव कहीं पर नहीं था। उसने वीर से पूछा, तुम्हारे बॉस कहाँ है? वो चला गया है और मुझे रुकने को कहा है। देखो, तुम अपनी देखभाल खुद कर लेना क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तुम्हारी ट्रीटमेंट और बाकी घर तक पहुंचाने के पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा, वीर ने जवाब दिया, जिसे सुनकर तारा को गुस्सा आने लगा। उसने ध्रुव के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की थी और उसे बचाने के लिए आगे आ गई थी, जबकि ध्रुव यहां उसे अकेले वीर के भरोसे छोड़कर चला गया था। एक बार पूछा तक नहीं कि वो ठीक है या नहीं, तारा गुस्से में चिढ़ते हुए बोली। मुझे ऐसे थैंकलेस लोगों के पैसे नहीं चाहिए। गरीब जरूर हूं लेकिन दीन ईमान है मेरा। आप भी जा सकते हैं, यहां पर नर्स मेरी देखभाल कर लेगी। जैसी तुम्हारी इच्छा, वीर ने कंधे उठाकर बेपरवाही से कहा और वहां से जाने लगा। तारा हैरानी और गुस्से से वीर की तरफ देख रही थी। वो चिढ़ते हुए बोली, जैसा बॉस है वैसा ही इसका ये मैनेजर, सच एन इनसेंसिटिव पर्सन। तारा मन ही मन ध्रुव पर गुस्सा हो रही थी, ऊपर से वीर वहां से जा रहा था। वीर जब हॉस्पिटल से बाहर निकला तो उसने मार्टिन को हॉस्पिटल के आसपास देखा। मार्टिन को तारा के गोली लगने की खबर मिल चुकी थी, इसीलिए वो उससे मिलने के लिए आया था।
वही मार्टिन कौन था ये वीर से छुपा हुआ नहीं था। अब वीर बाहर जाने के बजाय चुपके से मार्टिन के पीछे जाने लगा। मार्टिन इस बात से अनजान, वीर उसके पीछे है, बेफिक्री से तारा के रूम की तरफ बढ़ रहा था। क्या तारा का भांडा फूट जाएगा? अगर ध्रुव के सामने उसकी सच्चाई आ गई तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। और क्या ध्रुव कृषा के लिए मेहर से सगाई तोड़कर उससे दुश्मनी मोल लेगा?